रविवार 11 सितंबर दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर फायरिंग, सेना का दावा 3 चरमपंथियों की मौत। पंजाब में बादल सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल।
आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सारी बादलों की बसें जब्त करके अपने बेरोजगार युवकों को देंगे, अपने बेरोजगार युवक इनकी बादलों की बसें चलाएंगे। दोस्तों,
11 सितंबर की बरसी पर पीड़ितों को याद कर रहा है अमरीका। और संडे दिन भर में आज मुलाकात, इंदौर से लंदन जाकर डिप्टी मेयर बने राजेश अग्रवाल से।
मैंने जॉब की, एक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी में था, फिर वहीं से मुझे मौका मिला लंदन आने का, तो 2001 में मैं लंदन आया।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत प्रशासित कश्मीर में आज कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सेना का कहना है कि जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले में सेना के ठिकाने पर चरमपंथियों ने हमला किया है। इसी तरह सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 चरमपंथियों को भी सेना ने गोली मार दी है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुए चरमपंथी हमले की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हमले में लगभग 300 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस अवसर पर व्हाइट हाउस में एक मिनट का मौन रखा और बाद में पेंटागन में एक प्रार्थना सभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति ओबामा ने 11 सितंबर 2001 में हुए चरमपंथी हमले को अमरीका के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बताया। इसी चरमपंथी हमले के बाद अमरीका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने अफगानिस्तान और इराक में चरमपंथियों को निशाना बनाया था। सीरिया से मिल रही खबरों के मुताबिक अमेरिका और रूस के प्रयासों से होने वाले संघर्ष विराम से एक दिन पहले सरकारी बलों के हवाई हमले जारी हैं। शनिवार से अभी तक इन हमलों में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप एर्दोआन का कहना है कि सीरिया के भीतर तुर्की की कार्रवाई पहला कदम मात्र है। इन हमलों में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके को बड़ा नुकसान हुआ है। हम तुर्की और आसपास के इलाकों से पीकेके के सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीरिया में दाएश को खत्म करना भी हमारा कर्तव्य है। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप एर्दोआन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया की ओर से हाल ही में बड़े पैमाने पर किए गए परमाणु परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने राजधानी प्योंगयांग पर हमले की अपनी एक योजना जाहिर की है। समाचार एजेंसी यूनहप के मुताबिक इस योजना में उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के हर हिस्से को तबाह करने की तैयारी की गई है। इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और जबरदस्त क्षमता वाले बमों के इस्तेमाल की बात कही गई है। बीबीसी संवाददाता स्टीव इवांस के मुताबिक दक्षिण कोरिया के लोगों को लगता है कि उनकी सरकार उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम नहीं कस पाई है। सऊदी अरब के गठबंधन के नेतृत्व में उत्तरी यमन में हुए हवाई हमलों में कम से कम 18 नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। राजधानी सना के उत्तर में अरहाब जिले के लोगों का कहना है कि हवाई हमलों में गलती से उन लोगों को निशाना बनाया गया जो जमीन से पानी निकाल रहे थे। हमले के बाद स्थानीय लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो दोबारा हवाई हमला किया गया जिसमें कई लोग हताहत हुए। गठबंधन सेना का कहना है कि वो नागरिकों को निशाना नहीं बनाती, लेकिन हमलों में आम नागरिक पहले भी मारे जाते रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। आज 11 सितंबर है और अमेरिका 15 साल पहले हुए चरमपंथी हमले को याद कर रहा है, जिसने दुनिया के लिए कई चीज़ों के मायने हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। इस खबर पर हम आएंगे थोड़ी देर में, पहले बात करते हैं कश्मीर की। भारत प्रशासित कश्मीर आज भी अशांत है। वहां अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनों के दौरान हुए झड़पों में 118 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा जम्मू के पूंछ में सेना के एक ठिकाने पर चरमपंथियों के हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। यहां मुठभेड़ अभी जारी है। इतना ही नहीं, नियंत्रण रेखा पर सेना के मुताबिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे चरमपंथियों के एक दल के साथ हुए मुठभेड़ में 3 चरमपंथियों की मौत हो गई है। और इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ ही देर पहले मैंने हमारे सहयोगी रियाज मसरूर से बात की।
जी देखिए, कश्मीर में तो कई जगहों पे प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनों के दौरान जो फोर्सेज की कार्रवाई रूटीन में होती है उन कार्रवाइयों में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और आज भी बंद है, जैसा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहले ही बंद का आह्वान किया हुआ है। और प्रशासन का कहना है कि किसी भी जगह कर्फ्यू नहीं है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में नाकाबंदी की गई है और कई इलाकों में जहां पर अक्सर पथराव होता है वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन इस बीच जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले में पुलिस का कहना है कि चरमपंथियों ने सेना की एक इंस्टॉलेशन है वहां पे, सेना का एक हेडक्वार्टर है, उसके साथ में जिला प्रशासन का ऑफिस है जिसको मिनी सेक्रेटेरिएट कहते हैं, वहां पे जिला प्रशासन के सभी दफ्तर होते हैं और उसके निकट में एक छोटी सी बिल्डिंग है, वहां पे गारद भी होती है और सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात होते हैं। उन पर पहले तो फायरिंग की गई पुलिस के अनुसार और उसके बाद चरमपंथी अंदर घुस गए। तो ये कई घंटों से जारी है ये एनकाउंटर और इसमें सेना का कहना है कि एक सैनिक उसमें घायल हो गया है और अभी तक की जो कार्रवाई हुई है सेना पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों की साझी कार्रवाई में उसमें एक चरमपंथी अभी तक मारा गया है। इस बीच सेना ने कश्मीर घाटी में कहा है कि जो उत्तरी जिला कुपवाड़ा है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट 3 घुसपैठियों को पाकिस्तानी क्षेत्र की तरफ से, जो भारत प्रशासित कश्मीर का क्षेत्र है, उसकी तरफ आते हुए देखा गया तो उनके साथ मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 3 चरमपंथी मारे गए हैं।
रियाज, काफी दिनों के बाद वहां घाटी में सेना को तैनात किया गया है, क्या सेना के आने के बाद से स्थिति में कोई बदलाव देख रहे हैं आप?
देखें, ऑफिशियली तो सेना को तैनात नहीं किया गया है, न तो सरकार ने इसकी पुष्टि की है न ही सेना इसकी पुष्टि कर रही है, लेकिन सेना का ये कहना है कि प्रशासन ने उनसे कहा था कि जो हाईवे है, जो 300 किलोमीटर का श्रीनगर जम्मू हाईवे है, उसको सिक्योर करने के लिए सेना की मदद ली गई थी, लेकिन आबादी वाले क्षेत्रों में अभी तक सेना ने न तो कोई फ्लैग मार्च किया है और न ही ऑफिशियली उसको तैनात किया गया है। लेकिन 2 दिन पहले जो आर्मी चीफ ने विजिट किया था, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने दक्षिणी कश्मीर में विक्टर फोर्स का हेडक्वार्टर अवंतीपोरा में, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि दक्षिणी कश्मीर में जो उनके काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं और दूसरे काम होते हैं वो करते हैं, तो उसमें कहा गया था कि प्रशासन की मदद की जाए जब भी ऐसी स्थिति बने। लेकिन सेना के आने के बाद अगर ये कहें कि स्थिति ठीक हो गई है, ये गलत होगा, क्योंकि आज ही जो है करीमाबाद पुलवामा में एक इलाका है जहाँ पे एक भारत विरोधी रैली का आयोजन करने का प्रयास किया लोगों ने और उस प्रयास को विफल करने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस ने साझी कार्रवाई की जिसमें 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
ज्यादातर जो अलगाववादी नेता हैं उनको सरकार ने नजरबंद कर रखा है, तो इस वक्त इन लोगों का नेतृत्व तो कर कौन रहा है?
जी देखें, जहाँ तक नेतृत्व की बात है, हर सप्ताह जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो साझी लीडरशिप है उनका एक कैलेंडर आता है बाकायदा, जो यहाँ के समाचार पत्र में छप जाता है और इंटरनेट पर सर्कुलेशन होता है। उस प्रोटेस्ट कैलेंडर को लोग फॉलो करते हैं, जिस दिन प्रदर्शन की कॉल होती है उस दिन प्रदर्शन होते हैं, जिस दिन ब्लैकआउट की कॉल होती है उस दिन ब्लैकआउट होता है, और हर दिन एक दो रोज को छोड़ के पूरे सप्ताह में हर दिन 6 कॉल होती है और 6 बजे के बाद मार्केट्स ओपन होते हैं। इसमें मुझे लगता है कि लोग जो है उन कैलेंडर्स को फॉलो करते हैं।
बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर जानकारी दे रहे थे श्रीनगर से इस बारे में, जो आज वहां पर घटनाएं हुई हैं। 3 चरमपंथियों की मौत नियंत्रण रेखा पर हुई है, जबकि 1 चरमपंथी जम्मू के पूंछ सेक्टर में जो मुठभेड़ चल रही है उसमें मारा गया है। और आइए अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। पंजाब आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली से गूंज रहा है। पंजाब के मोगा में उन्होंने रैली की है और सत्ता में आने पर पंजाब के किसानों के लिए भरपूर काम करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के शासन में किसी किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के अपने शासन का उदाहरण देकर के बताया कि बहुत सी चीज़ें वो मुफ्त में मुहैया कराएंगे लोगों को।
आज पंजाब में जब किसान मंडी के अंदर अपना फसल लेके जाता है तो कई कई हफ्तों तक उसको अपनी फसल लेके बैठे रहना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर उसकी फसल खरीद ली जाएगी और 72 घंटे के अंदर उस किसान की पेमेंट करा दी जाएगी। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, हमने टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पंजाब के अंदर भी हर पिंड विच एक एक डिस्पेंसरी, एक एक मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक खोला जाएगा जिसके अंदर सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त और सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। दोस्तों,
अरविंद केजरीवाल ने किसानों को लुभाने के अलावा इस रैली में बादल सरकार की भी खूब खिंचाई की, उन पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे सत्ता में तो बादल की जो बसें चल रही हैं राज्य में वो सब जब्त कर लेंगे।
हम लोग देखते हैं ये बादलों की बसें चल रही हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सारी बादलों की बसें जब्त करके अपने बेरोजगार युवकों को देंगे, अपने बेरोजगार युवक इनकी बादलों की बसें चलाएंगे। दोस्तों,
रैली और नेताओं के भाषणों का शोर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रहा है, जहां एक तो यात्राएं चल रही हैं, दूसरी तरफ रैलियां हो रही हैं। बीएसपी की मायावती रैली कर रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी भी देवरिया से जिस किसान यात्रा को लेकर दिल्ली की ओर चले हैं वो गाजीपुर पहुंच गई है। राहुल मऊ और आजमगढ़ होते हुए यहां पहुंचे। उन्होंने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा,
किसान ट्रस्ट नरेंद्र मोदी पर, कभी वो अमरीका जाता है ओबामा से गले मिलता है, कभी जापान जाता है चीन जाता है, आपने नरेंद्र मोदी को किसी किसान के घर में देखा है कभी? वो तो देखिए मोदी जी की किसान के साथ नहीं मिल सकती, पता है क्यों? कपड़े गंदे हो जाएंगे उनके, जो उनका 15 लाख का जो सूट था वो गंदा हो जाएगा, इसलिए वो आपके बीच में नहीं आते हैं।
राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाते कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ, और आज जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा कि आज 11 सितंबर है और मौजूदा दौर में किसी दिन को उसकी तारीख के नाम से अगर सबसे ज़्यादा याद किया गया है तो वो शायद 11 सितंबर ही है। 15 साल पहले अमेरिका पर हुए इस चरमपंथी हमले में करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी, और इसके बाद शुरू हुआ युद्ध और चरमपंथ का एक ऐसा सिलसिला जिसमें दुनिया के करोड़ों लोगों पर असर हुआ, जिसका अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज व्हाइट हाउस में ठीक उस वक्त जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से विमान टकराया था, यानी सुबह के 6:30 बजे, उस लम्हे को याद करने के लिए वो उस यादगार सभा में पहुंचे। इसके लिए लोअर मैनहट्टन के सेंट पॉल चैपल में बेल ऑफ होप बजाया गया। उधर ग्राउंड जीरो पर, यानी वो जगह जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर थे, उसे अब एक मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया है। वहां एक एक कर उन लोगों के नाम पढ़े जा रहे हैं जो इस हमले के पीड़ितों में हैं।
Joao Alberto de Fonseca Aguiar Jr.
Brian G. Ahern.
Jeremiah Joseph Ahern.
Joanne. एक दिन पहले शनिवार को राष्ट्रपति ओबामा ने अपना साप्ताहिक भाषण भी जारी किया, जिसमें ओबामा ने 11 सितंबर के हमलों के बारे में कहा।
15 years ago, a September day that began like any other became one of the darkest in our nation's history.
15 साल पहले किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ सितंबर का एक दिन हमारे देश के इतिहास का काला दिन बन गया। ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो गए, पेंटागन ज्वाला में घिर गया, पेंसिल्वेनिया का एक मैदान विमान के मलबे के साथ जलता रहा और करीब 3,000 बेकसूर लोगों की जान गई। बेटे और बेटियां, पति और बीवियां, पड़ोसी, सहकर्मी और दोस्त, उसमें हर तरह के लोग थे, सभी नस्लों के, सभी धर्मों के, सभी रंगों और वर्गों के, अमेरिका के और पूरी दुनिया के। इस सप्ताहांत हम एक बार फिर उनकी यादों का सम्मान कर रहे हैं। हम इस हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं जो आज भी उसकी पीड़ा झेल रहे हैं। हम उन लोगों का आभार मानते हैं जिन्होंने हमले के बाद बचाव का काम शुरू किया और दूसरों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। अमरीका ने इस हमले के बाद अफगानिस्तान और इराक पर हमला किया और इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि दशक भर से ज़्यादा के लिए चरमपंथ को सिर उठाने की ज़मीन मिल गई। दूसरी तरफ 11 सितंबर को जब अमेरिका पर चरमपंथी हमला हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। न्यूयॉर्क शहर में तो तबाही मची ही, हमले के बाद जो धरपकड़ शुरू हुई, मुसलमानों के खिलाफ सख्ती हुई, उसकी चपेट में न्यूयॉर्क में रहने वाले हजारों पाकिस्तानी भी आए। 15 सालों के बाद वो किस हाल में हैं ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय पहुंचे न्यूयॉर्क के लिटिल पाकिस्तान कहलाने वाले इलाके में।
न्यूयॉर्क शहर के मरकज से मुश्किल से आधे घंटे की दूरी पर है ब्रुकलिन का कोनी आइलैंड, लेकिन यहाँ की फिजा न्यूयॉर्क नहीं पाकिस्तान के ज्यादा करीब नजर आती है। अमेरिका इसे लिटिल पाकिस्तान के नाम से जानता है। कहते हैं कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरते ही जब किसी पाकिस्तानी को अपने मुल्क की याद सताती है तो यहाँ आता है वो। क्योंकि यहाँ मिलता है पाकिस्तानी खाना, बॉलीवुड का गाना, पाकिस्तानी कपड़े और पाकिस्तानी लोग। लेकिन 11 सितंबर का हमला हुआ तो यहाँ के हालात काफ़ी बदल गए। यहाँ रहने वाले हज़ारों ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं थे, उन्हें अमरीका से बाहर कर दिया गया। कुछ डर के मारे कनाडा चले गए।
पेशे से अकाउंटेंट और कम्युनिटी वर्कर बाजा रूही को अमेरिका आए मुश्किल से 3-4 बरस हुए थे। कहती हैं, कभी लाहौर की याद दिलाने वाला यह इलाका 11 सितंबर के हमले के बाद जैसे उजाड़ सा हो गया।
बहुत कुछ बदल गया, पूरा कोनियान खाली हो गया, बहुत सारी फैमिलीज खुद भी चली गई, कुछ डिपोर्ट हो गई, कुछ कनाडा चले गए, बिल्कुल खाली हो गया। और खासा खौफ और हरास वाला माहौल था कि जब सुबह सोकर उठते थे तो पता चलता था कि जी फलां बिल्डिंग में छापा पड़ा है, किसी एक बंदे को ढूंढने आए थे, वो था नहीं, उसके हमसायों को नॉक किया, उनको भी ले गए, फिर उनके हमसायों को ले गए, तो एक खौफ और हरास हर वक्त फैला रहता था, सहमा हुआ माहौल था यहाँ।
यहाँ उन दिनों जैसा खौफ तो नहीं है, लेकिन क्या हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं?
वैसी रौनकें तो वापस नहीं आई हैं, वो जो एक कॉन्फिडेंस होता था लोगों में यहाँ पे रहने वालों में, वो नहीं है। जब भी सितंबर 11 की बरसी होती है तो रेड अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है, तो सबसे पहले जो है ज़्यादा नज़र आता है रेड अलर्ट, वो कोनी आइलैंड पे नज़र आता है।
11 सितंबर के बाद के दिनों में यहाँ रहने वालों और पुलिस के बीच के आपसी विश्वास पर भी खासा असर पड़ा। मुसलमानों पर जिस तरह से नज़र रखी गई उस पर अक्सर सवाल उठे, लेकिन कम्युनिटी लियाज़ों ऑफिसर के तौर पर मुसलमानों और पुलिस के बीच पुल का काम करने वाले मोहम्मद असलम ढिल्लन कहते हैं कि हालात बेहतर हुए हैं।
जो पुलिस वाले वाच कर रहे हैं, मुस्लिम सेंटर हैं, कोई भी है, मतलब मास्क हैं, उनको वाच कर रहे हैं, लेकिन हमने तो उनको पहले ही बोला कि अगर कोई बंदा गलत होगा, कोई बंदा गलत काम कर रहा है, हम तो पहले ही फॉर्म कर रहे हैं कैमरा लगाने या उनको स्पाइक करने, वाच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो खुद जो है ना पीसफुल हैं।
यहाँ पर महिलाएं भी हमलों का निशाना बनी थीं। बहुतों ने तो हमलों के डर से पारंपरिक लिबास पहनना छोड़ दिया था। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली नबीला असलम को फ़ोन पर धमकियां और भद्दी बातें भी सुननी पड़ी थीं, लेकिन आज उनके पार्लर में रौनक दिखती है। और तो और, ग्राहकों में अब गैर पाकिस्तानी भी दिखते हैं।
ये 11 सितंबर के बाद फिर एक उसके दौरान ही सब पाकिस्तानी काफ़ी मूव हो गए, कोई कनाडा की दूसरी स्टेट में, लेकिन बिजनेस में फ़र्क पड़ा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पाकिस्तानियों का काम और अमेरिका का ज़्यादा।
हालात बदले हैं, लेकिन अभी भी पुराने दिन भूले नहीं हैं। बाजा रूही कहती हैं कि अमरीकी चुनाव अभियान में मुसलमानों के बारे में जिस तरह की बातें हो रही हैं, उनकी वजह से दहशत जैसे फिर से दस्तक देने लगती है।
एक बेतबारी की सूरत हाल पैदा होती है कि लोग कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम वापस चले जाएं, किसी दूसरी जगह मूव कर जाएं। ना करदा गुनाहों की जो सज़ा है वो मुसलमानों को मिल रही होती, कहीं पर हमला कोई करता है और दिल मुसलमानों के सहम जाते हैं।
उनके पड़ोस में ही रेस्तरां चलाने वाले कैसर इकबाल कहते हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि अमरीकी जनता और राजनेता आम मुसलमानों को देखें, चार भटके हुए लोगों को देखकर राय नहीं बनाएं।
हमारे राष्ट्र में जब जो गोरे आते हैं या अमेरिकन आते हैं, वो जब आके देखते हैं कि हम उनसे किस तरह डील करते हैं, किस तरह गुफ्तगू करते हैं और किस तरह हमारा दिक्कत है, तो वो समझते हैं कि यार नहीं यार, ये लोग इस किस्म के नहीं, जैसा हमारे इनके बारे में एक परसेप्शन बनी हुई है, दे आर टोटली डिफरेंट। वो ये इंट्रैक्शन जब होता लोगों का, तो लोगों को अंदाजा होता है कि यार ये लोग मुख्तलिफ हैं, उस तरह के नहीं हैं जो लोगों ने इनके बारे में बातें फैलाई हुई हैं।
लिटिल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की आबादी अभी भी पहले जितनी नहीं है, लेकिन बढ़ रही है। जिंदगी काफ़ी हद तक ढर्रे पर लौट चुकी है, लेकिन बहुतों का कहना है कि 11 सितंबर का जिक्र या फिर अमेरिका के किसी कोने में हुए चरमपंथी हमले के बाद तमाम मुसलमानों पर उठने वाली उंगलियां पुराने जख्मों को जैसे फिर से कुरेद देती हैं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क।
लंदन के डिप्टी मेयर के तौर पर भारतीय मूल के बिजनेसमैन राजेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 39 साल के राजेश अग्रवाल को संडे टाइम्स ने अपने सबसे धनी लोगों की सूची में रखा था। भारत से लंदन तक कामयाबी के सफर के बारे में BBC संवाददाता शिवानी कोहोक ने उनसे बात की है और यही बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं आज संडे दिन भर में।
हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय मूल के बिजनेसमैन राजेश अग्रवाल, जिनकी हाल ही में लंदन के डिप्टी मेयर फॉर बिजनेस के तौर पर नियुक्ति हुई है। इनसे जानते हैं कि इनका ये लंदन तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले ये बताएं, भारत में आप कहाँ से हैं और वहाँ पर आपके किस किस्म के परिवार में परवरिश हुई?
पढ़ा वहीं, मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, मेरी माता जी एक स्कूल में पढ़ाती थी और फिर प्रिंसिपल थी, और मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो काफ़ी सिंपल बैकग्राउंड में पला बड़ा मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, माता पिता और मैं, ऐसे हम पांच लोग, हम एक छोटे से कमरे में रहते थे, तो इंदौर से ही शिक्षा दीक्षा सभी हुई।
और स्कूल में आप कैसे छात्र हुआ करते थे? क्या गणित पर तब भी आपकी पकड़ मजबूत थी?
उतनी अच्छी नहीं थी गणित, इंटरेस्टिंगली तो उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, पर छात्र में बहुत साधारण छात्र था और कोई भी ऐसा विशेष वो नहीं था, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी रुचि थी। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में, एक्सटेम्पोर कंपटीशन में, चित्रकला में, इस प्रकार की गतिविधियों में मेरी रुचि ज़्यादा रही और एकदम पढ़ाई में तो कम रही।
किस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत करी?
तो जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैं तकरीबन 22 वर्ष का था और मेरी पहली जॉब लगी चंडीगढ़ में, तो एक वेब डिज़ाइनिंग कंपनी थी और उसी में मेरी जॉब लगी। तो 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह थी और मैं इंदौर से चंडीगढ़ चला गया, वहाँ रहा करीब 6 महीने रहा और फिर वहाँ से मैं मुंबई आ गया और मुंबई में करीब 1.25 साल मैंने जॉब की। एक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी में था, फिर वहीं से मुझे मौका मिला लंदन आने का, तो 2001 में मैं लंदन आया।
और लंदन जब आप आए तो आपको आते ही आपने सोसाइटी को कैसा पाया, क्या कल्चरल शॉक लगा आपको?
कल्चरल शॉक तो इतना नहीं लगा क्योंकि मुझे लंदन की एक खासियत है कि वो सभी का स्वागत करता है। मुझे आज भी याद है 30 सितंबर 2001 की सुबह मेरा प्लेन लैंड किया यहाँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अजनबी शहर में हूँ, मुझे बहुत अपनापन लगा। भाषा से एक शायद फ़र्क पड़ता है, इतिहास से शायद फ़र्क पड़ता है। यहाँ की जगह जगह लोकेशंस हमने 50 बार बॉलीवुड की फिल्मों में देखी हुई होती हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं टोटली अनजान जगह पर गया हूँ, तो एक काफ़ी अपनापन सा लगा।
लेकिन देखें, ब्रिटेन की सोसाइटी पर हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि रेसिज्म है सोसाइटी में, और अभी भी ब्रेक्सिट के बाद हमने देखा कि हेट क्राइम था, तो क्या आपको ये महसूस हुआ?
नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बड़ा शहर है, बड़े शहर में लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं, पर लंदन एक ऐसा शहर है जहाँ सारी दुनिया के लोग आते हैं। करीब 40% आबादी लंदन की ब्रिटेन के बाहर पैदा हुई है, तो ये तो शहर ही अप्रवासियों का है। यहाँ पे सारी दुनिया से लोग हैं, यहाँ पे फ्रेंच हैं, यहाँ पे इंडियन हैं, यहाँ पे पोलिश हैं, यहाँ पे सारी दुनिया के लोग हैं। 230 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं लंदन में, और शुरू से लंदन एक बड़ा केंद्र रहा है शिक्षा दीक्षा के लिए। हमारे कई सारे इतिहास में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, महात्मा गांधी, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी, उन्हीं सभी का शिक्षा दीक्षा यहीं हुई।
अपने बिजनेस के सफ़र के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। यही बिजनेस, पैसे अपने यहाँ से लेके अपने देश में वापस भेजने का बिजनेस ही क्यों आपने चुना? इसके पीछे कोई इमोशनल वजह थी?
इमोशनल तो नहीं, मुझे ये लगता था, मैं कभी खुद भी भेजता था और मैं ये देखता था कि बैंक्स काफ़ी ओवरचार्ज कर रहे हैं, बहुत अधिक फीस भी लेते हैं, एक्सचेंज रेट भी अच्छा नहीं देते हैं। तो ये एक मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसा लगा कि ऐसा अवसर है कि इसको अच्छे से किया जा सकता है, इसको ऑनलाइन ले जाया जा सकता है और लोगों को अच्छी सेवा दी जा सकती है। तो वही मैंने किया, छोटा सा एक लैपटॉप से बिज़नेस शुरू किया और धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ता चला गया।
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, आपके जैसे बहुत से भारतीय आते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं, कहीं ना कहीं आपको, आपके पास यहाँ का शिक्षण नहीं है, आपके पास यहाँ का बोलने का अंदाज़ नहीं है, उनको जगह जगह पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, और कभी आपको ऐसा लगा बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के दौरान कि आपको कहीं डिस्क्रिमिनेट किया गया हो?
मैं तो ये कहूँगा कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ की है या आपके बोलने का अंदाज़ कैसा है, इस बात का महत्व जीवन में बहुत कम है और बहुत सीमित है। हमें अपने पे आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और हमें पूरी दृढ़ता के साथ उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लहजा कैसा है।
आपको लग रहा है कि युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत में, कि उन्हें बाहर आना पड़ता है, देश से ब्रिटेन आना पड़ता है, अमरीका जाना पड़ता है?
अपॉर्चुनिटीज़ भारत में बढ़ रही है, भारत अभी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो अपॉर्चुनिटीज़ जब मैं 15 साल पहले भारत में था उससे तो आज कहीं ज़्यादा है। कई सारी नई इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हो गई जो पहले नहीं थी। टेलीकॉम इंडस्ट्री 2001 में जब मैं था, जब शुरू ही हो रही थी, इंटरनेट की इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड थी, अब बहुत बढ़ गई है, तो कई सारी नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, बात यह है कि युवाओं में उत्साह है और दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास है कि नहीं। यदि आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय है और उत्साह है, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं।
आप डिप्टी मेयर फॉर बिजनेस हैं, तो ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में कितना फ़ायदा होगा?
ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंध तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। काफ़ी आप देखें तो यहाँ सबसे बड़ी कार कंपनी जो है वो भारतीय है, अब तो भारतीय ओन्ड है। सबसे बड़ी चाय की कंपनी है, हम चाय बहुत पीते हैं हिंदुस्तानी लोग, तो सबसे बड़ी दुनिया की जो चाय की कंपनी है टेटली, वो भी टाटा ओन्ड है। जो यहाँ की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है वो भी भारतीय ओन्ड है। और मीडियम साइज बिजनेसेस में भी बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है ब्रिटेन और भारत के बीच में। इनफैक्ट भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है और लंदन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। तो भारत और ब्रिटेन के संबंध, व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो भारत को कोई भी देश अब नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ब्रिटेन और भारत के संबंध तो काफ़ी पुराने शुरू से रहे हैं, और मैं इस बात का मुझे पूरा निश्चय है कि ये आगे और बढ़ते चले जाएंगे।
और आपका इसमें कितना योगदान होगा?
इसमें सभी लोगों का योगदान है, और इसमें जो यहाँ पे 8 लाख से ऊपर भारतीय रहते हैं उनका योगदान है, और ये कोई एक व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं हो सकता है। और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा मैं भी करूँगा, क्योंकि भारत ब्रिटेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आप भारत में होते तो क्या आप राजनीति ज्वाइन करते?
अब इस बात का इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो सब इमेजिनेशन और सोचने की बातें हैं। सच ये है कि मैं यहाँ आया और मैं ज़्यादा सोच के नहीं आया। मैं तो अब 24 वर्ष का था जब मैं यहाँ आया, तो जॉब के लिए आया, जॉब से बिज़नेस में गया, बिज़नेस से पॉलिटिक्स में आया, और पॉलिटिक्स मेरे लिए सिर्फ एक सेवा का माध्यम है और सामाजिक परिवर्तन लाने का ज़रिया है। इससे ज़्यादा मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर जो सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक बदलाव में जिसकी रुचि है। मेरी रुचि राजनीति में कम है, राजनीति एक ज़रिया है समाज सेवा का। अब ये समाज सेवा आप कहीं भी करें, मुझे याद पड़ता है गांधी जी जब ये लंदन में पढ़ते थे तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए वो वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़े और कई अलग संस्थाओं से जुड़े। जब वो साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे उन्हें कुछ मुद्दे दिखाई दिए, उन्होंने वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश की। जब वो भारत गए तो उन्होंने वहाँ किया। तो जहाँ भी हम रहें, हमारे इर्द गिर्द का वातावरण हम बेहतर बनाने की कोशिश करें और वहाँ अच्छे परिवर्तन लाने की कोशिश करें, वो इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ हैं इस बात का इम्पोर्टेंस कम है।
आप भारत से कितना जुड़े हुए हैं? अब भी 15 साल हो गए आपको लंदन में, कितनी बार आप भारत जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके बच्चे हिंदी में बात करते हैं या नहीं?
बिल्कुल करते हैं, और मैं भारत में जनरली जाता हूँ तो मेरे माता पिता अभी भी इंदौर में रहते हैं, तो मैं इंदौर तो ज़रूर जाता ही हूँ, पर मुंबई जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ कभी कभी, और इंदौर जाता हूँ। ये 3 मेन शहर हैं, साल में 2 या 3 बार जाना होता है, पर कनेक्टेड मैं बराबर रहता हूँ। bbchindi.com के ज़रिए मुझे खबर लगती रहती है कि भारत में क्या हो रहा है। और अब दूरसंचार सेवा से काफ़ी परिवर्तन आ गया है। 15 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी महंगा था जब फ़ोन करना भारत में। अब मुझे याद है जो सबसे सस्ता कॉलिंग कार्ड आता था वो करीब 35 पेंस पर मिनट का हुआ करता था। अब हमारे पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप है, फेस टाइम है, तो कभी कभी अपने माता पिता को, मेरे बच्चों को देखना होता है तो वो फेस टाइम पे भी देख लेते हैं। और तो दूरसंचार सेवा और जो तकनीकी विकास हुआ है उसके ज़रिए एक दूसरे से अब टच में रहना और सरल हो गया है।
लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल से बात कर रही थी हमारी सहयोगी शिवानी कोहक, और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आइए सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में आज कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुए चरमपंथी हमले की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हमले में लगभग 300 लोग मारे गए थे। सीरिया से मिल रही खबरों के मुताबिक अमरीका और रूस के प्रयासों से होने वाले संघर्ष विराम से एक दिन पहले सरकारी बलों के हवाई हमले जारी हैं। उत्तर कोरिया की ओर से हाल ही में बड़े पैमाने पर किए गए परमाणु परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने राजधानी प्योंगयांग पर हमले की अपनी एक योजना जाहिर की है। सऊदी अरब के गठबंधन के नेतृत्व में उत्तरी यमन में हुए हवाई हमलों में कम से कम 18 नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। राजधानी सना के उत्तर में अरहाब जिले के लोगों का कहना है कि हवाई हमलों में गलती से उन लोगों को निशाना बनाया गया जो जमीन से पानी निकाल रहे थे। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया मानसी दास ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं दीपक जसरोटिया। दिन भर में आज इतना ही, डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।